ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय क्रमांक 23 श्लोक क्रमांक 40। धिग्वृतं धिग्बहुज्ञतां धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्षं विमुखाये त्वधोक्षजे। धिग्जन्मनस्त्रिवृद्यत्तद् धिग्वृतं धिग्बहुज्ञतां धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्षं विमुखाये त्वधोक्षजे। धिग्जन्मनस्त्रिवृद्यत्तद् धिग्वृतं धिग्बहुज्ञतां धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्षं विमुखाये त्वधोक्षजे। धिक्कार है जन्म, जन्म नह हमारा, त्रिव्रत तिबारा पहले माता पिता से, फिर ब्राह्मण दीक्षा द्वारा, तथा तीसरा वैदिक यज्ञ करते समय दीक्षा द्वारा। यत्तत् जो भी, धिक धिक्कार है व्रतम हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को, धिक धिक्कार है बहुज्ञताम अपार विद्वत्ता को, धिक धिक्कार है कुलम हमारे उच्च वंश को, धिक धिक्कार है क्रियादाक्षम कर्मकांड में हमारी दक्षता को, विमुख वैरी ये जो तू फिर भी, अधोक्षजे भगवान में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। ब्राह्मणों ने कहा धिक्कार है हमारे तिबारा जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वत्ता को, धिक्कार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को। इन सब को धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। तात्पर्य ऊपर दी गई परिभाषाओं के अनुसार त्रिवृद जन्म तीन बार जन्म का द्योतक है। पहला शारीरिक जन्म, दूसरा ब्राह्मण दीक्षा द्वारा, तीसरा वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा। परब्रह्म भगवान कृष्ण से अनजान रहने पर यह सब व्यर्थ है। ओम कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद और उनके पतियों का उद्धार, ये प्रसंग हम ले रहे हैं। और पिछले रविवार हमने इस प्रसंग के जो 8 शिक्षाएं भगवान ने प्रदान की, उसकी आखिरी शिक्षा, 8वीं शिक्षा पर हम हैं। जब ये जो श्लोक आज हमने लिया, जो कि ब्राह्मणों ने कहा, अपनी पत्नियों की भक्ति देखकर वो धिक्कार करने लगे अपने स्वयं की विद्वत्ता के ऊपर, अपने स्वयं के उच्च कुल में जन्म लेने के ऊपर, अपने स्वयं की जो साधना उन्होंने सिद्ध की थी यज्ञ के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, उस पर धिक्कार करने लगे। और अपने ऊपर धिक्कार करते हुए वो अपनी पत्नियों का गुणगान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर ली केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। तो 8वीं शिक्षा हमने पिछली बार ये ली थी कि हम कैसे इन ब्राह्मण पत्नियों की तरह भगवान श्री कृष्ण बलराम के लिए उपयोगी बने, न कि इनके पतियों के तरह केवल निपुण बने। ये बहुत निपुण थे जो भी कुछ करते। टू बिकम यूजफुल फॉर कृष्णा रादर देन स्किलफुल फॉर कृष्णा। उपयोगिता या यूटिलिटी इंग्लिश में उसे कहें तो हमारे साधना भक्ति में ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो कुछ साधना कर रहे हैं, साधना में हमारा जप, सत्संग, सेवा, प्रचार सब कुछ है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी साधना भक्ति में, हमें हर दिन हर क्षण इसे परखते रहना है। इन्वेंटरी लेनी है इसकी, स्टॉक टेकिंग जिसको कहते हैं, हमारे भक्ति का, कि हम कितने उपयोगी बन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रतिनिधि जो उनका मिशन है उसके लिए। तो इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे उपयोगिता के जो 3 लक्षण हैं। यूटिलिटी हैज 3 एस्पेक्ट्स और 3 सिम्टम्स। सबसे पहला लक्षण है जरूरत या आवश्यकता। यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन नीड, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन टाइम। एंड थर्ड एस्पेक्ट, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन रिजल्ट। नीड, टाइम एंड रिजल्ट। सबसे पहले यदि हम नीड लें या जरूरत, जैसे हाल ही में हमने पांडव निर्जल एकादशी मनाई, तो पांडव निर्जल एकादशी जो हम साल में एक बार मनाते हैं, बहुत बड़ा एनुअल इवेंट होता है ये पांडव निर्जला, पूरे 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाता है कई बार निर्जल रहना होता है, और वो भी गर्मी के मौसम में। इस वर्ष तो इंद्रदेव कृपालु थे कि उन्होंने बादल लाकर गर्मी दूर कर दी और वर्षा ऋतु ले आए जल्द। तब देखिए, पांडव निर्जल एकादशी जब हम करते हैं, तो हम सब भक्तों का अनुभव है कि उसके पश्चात जो द्वादशी का दिन होता है, वो द्वादशी का दिन वो भी उतना ही हमें याद रहता है जितना एकादशी का दिन याद रहता है। और बहुत से कारण होते हैं, बाकी किसी एकादशी के पश्चात हमें पारणा टाइम याद नहीं रहता इतना। परंतु पांडव निर्जल के बाद की द्वादशी, उसका पारणा टाइम, फास्ट ब्रेकिंग टाइम, एक महीना पहले ही लोग देख लेते हैं। मैं बता रहा था भक्तों को, मुझे याद है एक वर्ष राधा गोपीनाथ मंदिर में द्वादशी के दिन मुझे भागवतम क्लास देना था, पांडव निर्जल के दूसरे दिन। तो वो सबसे कठिन क्लास इसलिए थी क्योंकि फास्ट ब्रेकिंग टाइम उस वर्ष 10 बजे था। तो न केवल मुझे कठिन हो रहा था बोलना, बल्कि जो बैठे थे उनको ज्यादा कठिन हो रहा था सुनना। और मैं बता रहा था कि द्वादशी के दिन हम भक्त मॉर्निंग प्रोग्राम में जो तुलसी आरती की प्रदक्षिणा है उस पर बहुत गौर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम क्या गाते हैं, यानी कानी चप पानी। तो कम से कम शब्द में तो पानी आया। तो आप देखिए कि अगर हम इस उदाहरण को लें कि द्वादशी का दिन पांडव निर्जल के नेक्स्ट डे, और हमने इतनी लालसा अब पैदा कर ली है पानी या नींबू पानी, जो भी नींबू पानी, कभी इतना अच्छा नहीं लगा होगा हमें। तो जो भक्त हमें सबसे पहले नींबू पानी लाकर देता है, वो भक्त हमें बहुत ही प्रिय हो जाता है, कम से कम उस दिन। क्यों? क्योंकि हमें जब सबसे ज्यादा जरूरत है उस नींबू पानी की, उस समय उसने लाके दिया। और कल्पना कीजिए इसका उल्टा हो जाए कि जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, टाइम हो चुका है, लेकिन नींबू पानी बाहर नहीं आ रहा है, और यदि बाहर आ भी गया तो आपको कोई दे नहीं रहा। तो जरूरत या आवश्यकता, आवश्यकता के समय जब हमें कोई मदद करता है तो वो व्यक्ति जिंदगी भर हमारे गुड बुक्स में रहता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, हम इसके विषय में कहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हम गौड़िया वैष्णव, हमारे लिए कुरुक्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है वृंदावन से। जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। वो इसलिए क्योंकि भगवान वृंदावन छोड़कर जब मथुरा द्वारका गए, और बहुत वर्षों पश्चात जब ब्रजवासियों से वो मिले, वो कहां मिले, कुरुक्षेत्र में मिले। और श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग है कि कुरुक्षेत्र से ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, यशोदा माई, श्रीमती राधारानी ने भगवान कृष्ण को वापस वृंदावन ले जाना चाहा, और रथ यात्रा जगन्नाथ जी की, उसका एक महत्व ये भी है कि अपने मनोरथ पर बिठाकर गोपियां, यशोदा, राधारानी, वो भगवान कृष्ण को ले जा रही हैं कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम गौड़िया वैष्णवों के लिए कुरुक्षेत्र वृंदावन से ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां राधा रानी को हमारी जरूरत ज्यादा है। किसमें जरूरत ज्यादा है? भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाने में। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम मिशनरी हैं, हमें श्रीमती राधा रानी का भी संग कब करना चाहिए? जब राधा रानी के हाथ में कुछ मिशन हो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। हां, यदि वो मिशन उनका है उसमें यदि हम सहायक हो सकते हैं तो वो हम साधकों की परिपूर्णता है। तो इसलिए जब हम उपयोगिता या यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हमारी भक्ति में, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जरूरत है। वेयर देयर इज डायर नीड, जब वहां पर हम अपनी सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि जब किसी प्यासे को आप पानी पिलाओ तो उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है, देने वाले का, लेने वाले का और उस जल का भी। अब दूसरा एस्पेक्ट जो हम इसमें लिए, टाइम, कि कौन से समय पर आपने आपकी उपयोगिता प्रदर्शित की है। टाइम, वही नींबू पानी अगर फास्ट ब्रेकिंग के बाद आप लाकर दो बाल्टी भर कर, कोई फायदा नहीं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने पिछली बार उदाहरण लिया था जटायु और हनुमान जी का, कि जटायु और हनुमान जी ने रामचंद्र जी के उपयोगी बने परफेक्ट टाइम, जब जरूरत थी रामचंद्र जी को। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण था उनका। जैसे प्रभुपाद जब 1965 में अमेरिका गए तो अपने साथ वो बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गए थे, पांडुलिपि, और इतनी सारी वो पांडुलिपियां ले गए थे कि वो यदि किसी को देते टाइप करने के लिए, जैसे उनके एक हाई ग्रीव प्रभु को प्रभुपाद ने वो टाइपिंग का काम दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो खुद इंग्लिश के एडिटर और प्रोफेसर थे, टाइपिंग भी जानते थे। तो जब प्रभुपाद ने उनको टाइपिंग का काम दिया तो उनको इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ प्रभुपाद के लिए कर रहा हूं। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद मैं कुछ और टाइपिंग आपके लिए कर सकता हूं? प्रभुपाद कहे, हाँ जरूर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और जब प्रभुपाद ने बड़ा अपना ट्रंक खोलकर दिखाया, पूरा ट्रंक भरा हुआ है वो मैन्युस्क्रिप्ट से। तो जब हाईग्रीव प्रभु ने वो देखा तो उनको ये आशा नहीं थी कि इतना टाइपिंग करना होगा, और उस समय ये नहीं था कि कंप्यूटर था, टाइपराइटर के ऊपर। तो हाईग्रीव प्रभु प्रभुपाद से कहते हैं, प्रभुपाद दिस विल टेक एन एंटायर लाइफ फॉर मी टू टाइप। प्रभुपाद ने उनको करेक्ट किया, लाइफ टाइम्स, नॉट जस्ट वन लाइफ, लाइफ टाइम्स। और उस समय एक अमरीकी नवयुवक वो आया 26 सेकंड एवेन्यू। किसी ने उसे बताया नहीं कि यहां पर स्वामी जी कोई आए हुए हैं भारत से, उन्होंने कोई ऐसी संस्था चालू की है, कुछ उसे पता नहीं। बस उन्हें देखा कि हाँ कोई आध्यात्मिक लोग हैं, तो आया और उसने पूछा हाईग्रीव प्रभु से कि मैं यहां पर कुछ कम्युनिटी सर्विस करने के लिए आया हूं। वो विद्यार्थी था और उनके वेकेशन में, कॉलेज के वेकेशन में उनको एक्स्ट्रा स्कोर्स मिलते अगले साल यदि वो वेकेशन में कुछ कम्युनिटी सर्विस करते तो, मतलब कुछ चैरिटेबल वर्क। तो वो आए, उन्होंने देखा कि ठीक है ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, तो मैं अपने वेकेशन में मैं कुछ कम्युनिटी सर्विस करूं, चैरिटेबल वर्क करूं। तो वो आए पूछने के लिए कि मैं कुछ कम्युनिटी सर्विस करना चाहता हूं। इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं था भगवान श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत संघ से, कुछ कुछ भी लेना देना नहीं। तो हयग्रीव प्रभु ने पूछा कि क्या आप कर सकते हो, कुछ आपकी स्पेशलिटी क्या है? तो अविश्वास नहीं कहेंगे, इन्होंने कहा मेरी स्पेशलिटी है मैं टाइपिंग बहुत स्पीड से कर सकता हूं। तो तुरंत वो लेकर गए और वो बक्सा खोला और बक्सा दिखाया और ये इतने प्रसन्न हो गए ये नवयुवक, और ऑफ कोर्स हयग्रीव प्रभु प्रसन्न हो गए। और वो जो एक डेढ़ महीना इस नवयुवक ने, इसने केवल एक ही सेवा की, उसने न कभी माला उठाई, न कोई मंगल आरती अटेंड की, न कभी कोई सत्संग किया, उसने खाली एक ही कार्य किया, एक ही सेवा की, टाइपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ प्रभुपाद। और आज तक उस अमरीकी नवयुवक को सारे इस्कॉन के भक्त याद करते हैं, क्यों? बिकॉज ही शोड हिज यूटिलिटी एट द परफेक्ट टाइम व्हेन प्रभुपाद वांटेड। तो यूटिलिटी है, लेकिन अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं है तो उस यूटिलिटी का कोई फायदा नहीं। अब तीसरा एस्पेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां आवश्यकता और आवश्यकता के समय, नीड नीड इन टाइम बट देन द रिजल्ट। अब मान लो यही नवयुवक जिसने समय पर आकर जरूरत के अनुसार टाइपिंग तो किया लेकिन गलत कर दिया, सब टाइपिंग गलत कर दिया, तो क्या हुआ? रिजल्ट पूरा अलग आ गया। तो इसलिए रिजल्ट, जैसे हमारे एक सिद्धांत है हमारे शास्त्रों में, फले न परिचयित, कि हम जो कुछ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं कैसे समझेगा हमें? फले न, रिजल्ट से समझेगा। जब उसका रिजल्ट सही आ रहा है तो हाँ। जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में वो लिखते हैं कि यदि एक गौड़ीय वैष्णव को भगवत धाम जाना है तो कहते हैं कि एक फॉर्मूला है, दो चीजों में उसे बहुत अटेंटिव रहना है और वो निश्चित भगवत धाम जाएगा। यदि इन दो चीजों में वो अटेंटिव है, सावधान है, अटेंटिव इन चैंटिंग, अटेंटिव इन वैष्णव डीलिंग्स, अगर इन दो चीजों में वो बहुत ही जागरूक है, सावधान है, अटेंटिव है, केयरफुल है, तो जीव गोस्वामी कहते हैं वो भगवत धाम निश्चित जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि वो ये सब में जागरूक नहीं है, अटेंटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो वो श्लोक कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत से, बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाय कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन, बहु जन्म बहुत सारे जन्म यदि वो श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, इतने जन्म बीत गए माला घुमा रहा है, इतने लेक्चर सुन लिए, इतने मालाएं घुमा ली, जन्म बीत गए, केवल दिन नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, जन्म, बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाय कृष्ण पदे प्रेम धन। तब भी उसे कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा यदि वो श्रवण कीर्तन सही तरीके से नहीं कर रहा। तो इफ द साधका इज नॉट चैंटिंग एंड हियरिंग प्रॉपरली ऑफेंसलेसली, देन इवन इफ ही इज चैंटिंग फॉर लाइफ टाइम्स, he won't get Krishna prema dhan. तो मैं हाल ही में एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। प्रोजेक्ट ये है कि जो ऐसे श्लोक हैं, जैसे ये श्लोक चैतन्य चरितामृत का, तो ऐसे श्लोकों के संदर्भ में प्रभुपाद ने कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल्स कौन से दिए हैं, वो ढूंढकर उनको अप्लाई करना अपनी साधना भक्ति में। आप यदि प्रभुपाद की पुस्तकें इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, प्रभुपाद ने कहीं ना कहीं एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिए उस श्लोक को समझने के लिए। तो ये जो श्लोक अभी हमने सुना, बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन, इस श्लोक के लिए प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। उदाहरण है एक कथा के साथ। पहले उसका शीर्षक मैं बता देता हूं। प्रभुपाद ने इसका शीर्षक दिया कुकिंग विथ स्मोक। खिचड़ी पका रहे हो लेकिन धुएं के साथ। बहुत सुंदर उदाहरण है, हमने पहले भी सुना होगा लेकिन इस श्लोक के लिए बहुत उपयुक्त है ये उदाहरण, कुकिंग विथ स्मोक। तो ये एक स्टोरी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा कही गई उपदेश उपाख्यान में, कि एक राजा था और वो इतना धार्मिक नहीं था। जब भी धर्म के विषय में कोई कुछ उसे कहता तो हर समय उसकी कुछ शंकाएं होती। तो जब उसको एक बार उसके एडवाइजरी कमिटी ने धर्म ग्रंथ से सुनाया कि कैसे जो योगी होते हैं वो विभिन्न प्रकार की योग साधना से कैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको बताया गया कि जैसे एक सिद्धि योगी प्राप्त कर लेते हैं कि वो ठंड में, बर्फीली ठंड में बद्रीनाथ केदारनाथ आजकल बहुत समाचार में है, तो वहां पर भी बर्फीली ठंड में गंगा में जाकर वो अपना ध्यान समाधस्थ हो सकते हैं। तो इसे विश्वास नहीं हुआ है राजा को, नहीं हो सकता है, ये सब कहने की बातें हैं, असलियत में नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक योगी को ढूंढा और उस योगी को कहा कि आप हमारे राजा को ये करके दिखाओ। तो सर्दियों के मौसम में, बर्फीले मौसम में, उत्तराखंड में ये योगी गंगा में, यहां तक गंगा बह रही है और वो समाधस्थ है, एक घंटा, दो घंटा, एक मिनट भी जो उस गंगा में प्रवेश नहीं कर सकता, ये घंटों तक। तो राजा को वो सब ब्राह्मण लेकर आते हैं दिखाने के लिए, देखो। तो राजा देखता है और फिर राजा कहता है नहीं, ये ढोंग है। ये ढोंग? अरे आपके सामने ये गंगा, छू के देखो। तो राजा कहता है कि देखो वहां 2 किलोमीटर दूर एक लालटेन जल रही है, ये वो लालटेन से गर्मी अपने ऊपर ट्रांसफर करा रहा है, इसलिए ये बाहर से हीट अंदर ले रहा है कहीं से। देखो 2 किलोमीटर दूर लालटेन जल रही है, वहां से गर्मी। ये बोले पागल हो गए तुम? नहीं, तुम लोग पागल हो गए कि विश्वास कर रहे हो इसकी साधना पर। तब ऐसी व्यक्ति को आप क्या समझाओ, कैसे समझाओ? तो दूसरे दिन राजा को तो विश्वास हुआ नहीं। दूसरे दिन राजा अब रोज की तरह सुबह उठा और अपनी राजसभा में जाने के लिए तैयार हुआ और अपने बावर्ची से कहता है कि चलो जल्दी नाश्ता लाओ। तो बावर्ची ने कहा नाश्ता बन रहा है। बन रहा है? अरे टाइम हो गया। बोला नहीं बन रहा है, आधा घंटा हो गया नाश्ता अभी तक बना नहीं, 1 घंटा हो गया नाश्ता बना नहीं। वो कहता चल क्या रहा है, तुम बना क्या रहे हो? बोले मैं तो वही बना रहा हूं जो रोज खाते हैं आप, खिचड़ी। अरे तो फिर 1 घंटा हो गया खिचड़ी बनी क्यों नहीं? बोले पकी नहीं अभी तक। अरे तो पकी नहीं क्या, ये तुम बहाने मार रहे? तो किचन में आ गया वो देखने के लिए। तो किचन में आके देखता क्या है कि चूल्हा इतना सा जल रहा है और 10 फीट ऊपर उसने खिचड़ी की कढ़ाई टंगा रखी है। और राजा देखता है ये क्या चल रहा है, उसने कहा कि वो धुएं से पक रही खिचड़ी। मतलब बेवकूफ, धुएं से कभी खिचड़ी पकती है? तो बावर्ची कहता है यदि 2 किलोमीटर दूर से लालटेन से यदि कोई गर्मी अपने ऊपर ट्रांसफर करा सकता है तो 10 फीट ऊपर धुएं से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो उस दिन राजा को नाश्ता तभी मिला जब वो राजा स्वीकार किया कि हां वो योगी सही योगी था। तो ये कहानी बताई गई है और इस कहानी के द्वारा लेसन ये दिया गया है कि कई बार हमारी साधना, हमारा जप, हमारा सत्संग कैसे है, चूल्हा जल रहा है परंतु खिचड़ी का कुकर 10 फीट ऊपर है और हम प्रयास कर रहे हैं धुएं से वो दाल चावल पकाने के, और वो भी खिचड़ी हमने ऐसी रखी है कि तूर की दाल है तो ज्यादा टाइम लगता है पकने में और उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल दी। तो ये जो उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कुकिंग विथ स्मोक, कितनी बार हम अनुभव करते हैं कि कितने साल हो गए, हमारे लिए बहुत साल हो गए, कईयों के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस्कॉन में कईयों के लिए 20-25 साल हो गए, घूम रही है माला, घूम रही है माला भी घिस गई। और कई बार हमको लगता है कि वो माला एकदम चमकीली हो जाती है घिस घिस के, तो हमको लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। जब हम देखते हैं ना कई नए नए भक्त आते हैं तो उनकी माला एकदम कड़क होती है ऐसे और नई होती है सूखी सूखी, तो लग समझ में आया नया भक्त है। और किसी की माला वो बाहर निकाले एकदम चमकीली, ऐसे चमचमाती हुई जैसे तेल लगा कर आया अभी, अरे बहुत एडवांस डिवोटी है क्योंकि कितने वर्षों से घुमा रहा होगा इसे कि अब जाकर ये एकदम चमचमा रही है। तो प्रश्न है माला तो चमचमा रही है, हृदय का क्या? व्हाट अबाउट द हार्ट? जैसे पिछले हफ्ते हम लोग कितने अलग अलग चीजों में निपुण हो जाते हैं। तो पिछले हफ्ते मैं अपने जपा सर्कल में देख रहा था, मतलब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया वो दृश्य देखकर। तो एक भक्त, हम नाम नहीं बताएंगे उनका, तो सामने बैठे हुए थे। हुआ क्या कि अक्सर हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग हैं, हमारे साथ भी होता है। आपने कभी बार अनुभव किया माला अटक जाती है बीड बैग के अंदर, उलझ जाती है, अपने आप अपने में ही उलझ जाती है माला। अब ये भक्त जप कर रहे थे, अचानक वो पूरा वो गांठ, इतनी मोटी गांठ बन गया अंदर। वो क्या ज्यादा जोर से घुमाते हो गांठ और बड़ी होती जाती है, तो गांठ इतनी बड़ी हो गई। तब वो उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि बहुत मुश्किल से वो बीड़ तक पहुंचे। हमारे साथ भी होता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो ऐसे ऐसे उसको वो गांठ को ठीक कर रहे, नहीं गांठ ठीक नहीं हो रही। तो फिर अब क्या दूसरा हाथ नहीं लगाना चाहते, दिख जाएगा सबको, तो अंदर ही उसको ये उंगली से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ध्यान जा रहा है उसके ऊपर। मुझे हंसी भी आ रही है, मैं रोक रहा था हंसी। मैं मन में सोच रहा था कि अरे भाई छोड़ दो, एक और एक्स्ट्रा माला कर लेना। लेकिन कई बार हमें लगता है कि उस एक मणि के अंदर ही कृष्ण प्रेम छुपा है, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो फिर उन्होंने वो जो भी वो गांठ अभी बंध चुकी थी उतने पोर्शन को बाहर निकाला, और बाहर निकाल के फिर अलग अलग तरीके से गांठ निकालने की कोशिश की। फिर दूसरा हाथ इस्तेमाल ही किया उन्होंने, और दूसरे हाथ से, लेकिन इसको छोड़ा नहीं, उस बीड़ को छोड़ा नहीं, तो पूरी बीड्स बाहर निकाल ली, वो बीड बैग बाहर, उसको पूरा गांठ खोला, इसको छोड़ा नहीं, और पूरा जब सुलझा दिया उसको, उसको तब तक पकड़ के रखा उस बीड़ को, और फिर उनके चेहरे पर जो स्माइल था, और वो चेहरे का स्माइल इसलिए था क्योंकि जो वो हेड बीड मेरुमणि बस दो तीन बीड ही दूर था। तो हम बहुत से ऐसी चीजों में निपुण हो जाते हैं कि चाहे माला कितनी भी उलझ जाए, वी बिकम स्किलफुल इन समहाउ डिसएंटैंगलिंग द बीड्स विदाउट लूजिंग दैट वन बीड। कई बार आपने देखा कुछ अगर बीच में अचानक फोन आ जाए या कुछ आ जाए, तो भक्त वो माला को उतना पोर्शन बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के फिर घूम फिर के आते हैं, फिर वहीं से। एक भक्त को तो मैंने पूछा कि भाई उसको बाहर निकालने का मतलब क्या है, वापस नया राउंड नहीं चैंट कर सकते? उन्होंने कहा हमारे भगवत गीता का सिद्धांत है प्रभु, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य, कि प्रभुपाद ने उदाहरण इस श्लोक के द्वारा दिया है कि जहां पर आप अपनी भक्ति छोड़ते हो, चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं, आप वहीं से नेक्स्ट बीड से शुरू करते हो। तो ऑथराइज्ड है प्रभु, शास्त्र बोनाफाइड है ये। मैंने कहा ओके, अब इसके मैं क्या कहूं इसके ऊपर आपको। एक थे ब्रह्मचारी थे वो राधा गोपीनाथ में, तो उनका ऐसा था कि वो 108 पूरा, एक 108 नहीं एक माला पूरा कर सकते थे वो एक टाइम में। तो वो आधा माला ही कर देते थे फिर छोड़ देते थे, फिर शाम के समय 54 से शुरू करते थे। कितना हुआ आधा? 54 हुआ ना, 55 से शुरू करते थे फिर। तो बोलते थे कि सुबह मैंने काउंट किया था 54 तक था, अभी 55 से शुरू करूं। तो हम लोग ये सारी चीजों में कितना निपुण हो जाते हैं, परंतु कृष्ण प्रेम कितना आ रहा है ये प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि हमारी कृष्ण भक्ति की खिचड़ी पक रही है कि नहीं। तो दो एक्सट्रीम होते हैं, एक होती है खिचड़ी अधपकी रह जाती है या कच्ची रह जाती है, और दूसरा है खिचड़ी में इतना हम आग डाल देते हैं कि जल जाती है। कि कई बार कई भक्त होते हैं इतना एक साथ लकड़ी डाल दी उसके अंदर। अब देखो कुकिंग के अंदर आप उतनी आंच रखो आग की जितनी जरूरत है, ना कम ना ज्यादा। कम रखने से क्या होगा, वो खिचड़ी कच्ची रह जाएगी, ज्यादा रखने से जल जाएगी। इसलिए हमें हमारे क्षमता के अनुसार जो प्रयास है वो डालना है हमारी साधना भक्ति में। इसलिए ये बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, कुकिंग विथ स्मोक। तो ये जो हमने तीसरा एस्पेक्ट लिया है उपयोगिता का, यूटिलिटी का, फले न परिचय। अब देखो हमारे अनर्थों में भी हम देखते हैं कि फल के अनुसार समझ में आता है कि हमारे अनर्थ कितने हैं। जैसे एक उदाहरण यदि हम लें कि किसी को मलेरिया हुआ है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सिम्टम्स देखता है ना, उसके मलेरिया के सिम्टम्स देखता है जो भी ब्लड टेस्ट के द्वारा इत्यादि। तो मलेरिया के सिम्टम्स देख के वो कह देता है कि इसको मलेरिया हुआ है, और मलेरिया हुआ है ये किसका सूचक है कि उसको मच्छर ने काटा है। चूहे के काटने से मलेरिया नहीं होगा, कुत्ते के काटने से मलेरिया नहीं होगा, तुरंत मच्छर ने काटा है इसलिए उसे मलेरिया हो। तो समझ में कैसे आया कि कौन से मच्छर ने काटा है, वो उसके रिजल्ट से समझ में आता है, उसकी ब्लड रिपोर्ट से समझ में आता है। तो वैसे ही हमारे अंदर कृष्ण प्रेम धन, इसके कुछ लक्षण आए हैं कि नहीं। यदि आए हैं तो समझ में आएगा कि बहु जन्म कीर्तन श्रवण जो हमने किया है वो सही किया है। और यदि नहीं आ रहे वो लक्षण तो समझ में आना चाहिए कि कहीं बेसिक्स में फॉल्ट है। तो हमने एक बार ये टॉपिक लिया था हमारे संडे क्लासेस में, हम फिर से ये टॉपिक लेना चाहेंगे क्योंकि कलयुग की स्मृति है, भूल जाते हैं, और क्योंकि ये जो पॉइंट है फले न परिचय इससे कनेक्टेड है ये। तो हम कैसे चेक करें कि हम साधना भक्ति में श्रवण कीर्तन में सही पथ पर हैं, सही राह पर हैं। तो ये चेक करने के लिए 10 डिफरेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, 10 डिफरेंट वेज टू चेक वेदर माय साधना भक्ति इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। घबराइए मत, 10 के 10 आज नहीं लेंगे हम, आज केवल 5 लेंगे हम। तो हमने पिछली बार बहुत महीनों पहले, शायद साल पहले एक टॉपिक लिया था, तो एक बहुत सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, और उस भजन का एक पद है, बहुत सुंदर पद है, जो एक बार मैं इसको गा रहा था पढ़ते समय बहुत प्रेरणा मिली उस एक पद से। और इस पद में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लिखते हैं कि हम हमारी साधना भक्ति के ऊपर चेक कैसे रखें कि उसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं कि नहीं। तो इस पद में भक्तिविनोद ठाकुर कहे हैं, विषये जे प्रीति एबे आचाय आमार, सेई मत प्रीति होका चरणे तोमार। इसमें उन्होंने कहा है कि अक्सर हम जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनके भक्तों के विषय में सुनते हैं, तो हमारे मन में ये विचार आता है कि काश मेरे अंदर भी प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति होती, काश मेरे अंदर ध्रुव महाराज जैसा दृढ़ विश्वास होता, काश मेरे अंदर ब्रजवासियों जैसा प्रेम होता। यहां पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे महाजनों के विषय में जब हम सुनते हैं और ये सोचते हैं कि काश मेरे अंदर भी इनकी तरह भक्ति होती, तो हम निरुत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हमारे सामने दिखाई देते हैं। दे अपीयर टू बी टू फार अवे, सो समटाइम्स वी गेट डिस्करेज्ड। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहे हैं कि यदि मुझे ये चेक करना है कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही तीव्र भक्ति जागृत करूं मेरे अंदर, तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, यशोदा माई, राधा रानी, ब्रजवासी कुछ समय के लिए इनको भूल जाओ और स्वयं के ऊपर फोकस करो। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जितना प्रेम मुझे अपने आप से है, विषये जे प्रीति एबे आचाय अमार, अमार का अर्थ है जितनी प्रीति, जितना प्रेम, जितना स्नेह मैं स्वयं से करता हूं, कम से कम यदि उतना मैं भगवान से करना शुरू कर दूं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तो बहुत दूर की बात है कि जितना मैं प्रेम अपने आप से करता हूं, जितनी तीव्रता से मैं अपने आप के विषय में चिंता करता हूं, सोचता हूं, जो कुछ करता हूं, यदि केवल उतनी ही इंटेंसिटी, तीव्रता से मैं भगवान का श्रवण कीर्तन करने लग जाऊं, तो मेरा उद्धार निश्चित है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। इसलिए इस पद में उन्होंने गाया है, विषये जे प्रीति एबे आचाय आमार, सेई मत प्रीति होक चरणे तोमार। यदि उतनी प्रीति आपके, हे राधा मदन गोपाल, आपके चरणों में मेरी आ जाए, कितनी प्रीति, जितनी प्रीति मुझे अपने चरणों में, जितना प्रेम मुझे अपने नाम में है, यदि उतना प्रेम आपके नाम में आ जाए, जितना प्रेम मुझे अपने शरीर में है, उतना प्रेम यदि आपके अर्च विग्रह में आ जाए, ये सब उसके डिटेल्स हैं। जैसे कि बिल्वमंगल ठाकुर की कथा हम जानते हैं कि वो उस वैश्या से, चिंतामणि उस वैश्या से इतने आसक्त थे, और उस चिंतामणि ने किया क्या, यही कहा कि अरे जितने तुम मुझमें आसक्त हो, जितना तुम मुझमें प्रीति रखते हो, अगर लेश मात्र भी उसमें से भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारी प्रीति होती, तो तुम इतने बड़े संत बन गए होते। तो देखो, हमारे आचार्य कितने प्रैक्टिकली हमें समझा रहे हैं कि हमको निरुत्साहित नहीं, बल्कि जितने उत्साहित हम हमारे लिए होते हैं, उतने उत्साही यदि हम भगवान के लिए हो जाएं, तो हमारी नैया पार हो सकती है। तो इसमें हम 10 मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि 10 तरीके से हम कैसे अपने ऊपर इतने कृपालु रहते हैं हर समय। हाउ इन 10 वेज वी आर सो कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स, वी आर सो पर्टिकुलर अबाउट आवरसेल्व्स, वी लव आवरसेल्व्स इन दीज 10 वेज सो मच। और हमें करना क्या है, खाली हमारी फोटो निकाल के राधा मदन गोपाल की फोटो लगानी। जो 10 चीज हम हमारे लिए करते हैं, वही हमें अब भगवान के लिए करना प्रारंभ करना। शुरू करें तो सबसे पहला मुद्दा इसमें कि हम पैदा होते ही कितना कॉन्शियस रहते हैं अपने ऊपर. हाउ मच आर वी कॉन्शियस अबाउट आर सेल्व द मोमेंट वी टेक बर्थ. और इसका कारण क्या है, आप देखो जैसे ही हम पैदा हुए पूरा परिवार हमारे ऊपर अपना केंद्र डाला है ना. अरे राजा बेटा पैदा हुआ, कितना सुंदर दिखता है, देखो इसकी आंखें देखो, इसके नाक देखो, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा उसमें, कितना सुंदर दिख रहा, अरे इस पे गया है, अरे उस पे गया है, देखो कैसे हंसा. अब दुनिया में इतने बच्चे हंसते हैं उन पर गौर नहीं करते, लेकिन वो जो उस परिवार में पैदा हुआ है वो जब हंसता है तो उसकी हंसी के समान किसी की हंसी नहीं. तो होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर इतना वी बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कि ये हिला, इसने करवट ली, आंखें खोली, मुंह खोला, कुछ बोला. तो अब होता क्या है कि बाकी परिवार वाले हाँ वो अपना प्रेम दर्शा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे हम लोग सब, हमारे अंदर धीरे धीरे क्या प्रोग्रामिंग फिट होता है, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि मैं यदि हिलता भी हूं तो सब हिल जाते हैं मुझे देखने के लिए, मैं हंसता भी हूं तो सब खुश होते हैं, मैं रोता भी तो हूं तो सब परेशान हो जाते हैं, मेरे रोने में सब परेशान होते हैं, मेरे हंसने में सब हंसते हैं, मैं. वहां से शुरुआत होती है हमारे सेल्फ कॉन्शियस बनने की. और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और फिर कोई मुड़के भी नहीं देखता, तब फिर हमें अजीब लगता है कि अरे यही लोग जो दिन रात कभी इसकी गोद में, कभी उसकी गोद में, कभी इस पालने में, कभी वहां पर, इतना मुझे राजसी ठाट बाट में रखे थे, अब मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं. तब फिर वो प्रयास करना शुरू करता है कि कैसे अब लोग मेरी तरफ देखें. तो ये बचपन से हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाता है टू बिकम कॉन्शियस ऑफ वन सेल्फ. और अंत समय तक हमारा ये कॉन्शियसनेस रहता है. जैसे अभी हम लोग सब यहां बैठे हुए हैं. हाँ, राधा मदन गोपाल जी के दर्शन हैं हमारे सामने. जय श्री राधा मदन गोपाल जी, उनके दर्शन हैं. उनके सामने हम बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले स्पॉन्टेनियसली हमारा कॉन्शियसनेस कहां पर जाता है, अरे घुटने दर्द कर रहे हैं, थोड़ा पोजीशन चेंज करता हूं, 10 बज गए, उन्होंने तो खा लिया, अब हमें कब खिलाएंगे. वो तो अपना दरवाजा बंद करके बैठ के खा लिए, अब हमारे लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं, खा भी नहीं सकते. तो तुरंत हमारा कॉन्शियसनेस कहां जाता है कि मेरा पेट, मेरे घुटने, मेरा तिलक कैसा लग रहा है आज, आज मैं कैसा दिख रहा हूं. खैर वो तो रोज ही अच्छा दिखते हैं, मैं आज कैसा दिख रहा हूं. तो इसको बोलते हैं बिकमिंग ऑलवेज सेल्फ कॉन्शियस. और हां, बाहर की दुनिया में तो सब होते ही हैं, तो स्वाभाविक रूप से कि जितने दुनिया के आईने शीशे बनाए मेरे लिए बनाए, रास्ते पे भी चलते हैं तो अगर कोई आईना भी सामने आ जाए किसी दुकान में तो खड़े होके कि भाई पहले मैं अपने आप को संभाल लूं, बाकी दुनिया फिर चलती रहेगी, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, मेरी मूछें ठीक है कि नहीं, मैं कल की तरह एकदम धुआंधार दिख रहा हूं कि नहीं। तो हाउ मच वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर सेल्व्स। तो हमें चेक क्या करना है, चेक क्या करना है कि स्पॉन्टेनियसली मैं भगवान कृष्ण के विषय में कितना कॉन्शियस रहता हूं कि अरे 10 बज गए, 9:30 बज गए, भगवान ने खाया कि नहीं, भगवान को रेस्ट दिया कि नहीं, भगवान को उठाया कि नहीं, भगवान की आरती हुई कि नहीं। जितना हम स्पॉन्टेनियसली हमारे बारे में उठते ही, जैसे हम सुबह उठते हैं सबसे पहले अरे आज क्या है नाश्ते में, आज तो पांडव निर्जा है तेरी, आज तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमें पांडव निर्जल याद क्यों रहती है, हमें पांडव निर्जल इसलिए याद रहती है कि कुछ हमें नहीं मिलने वाला खाने के लिए। हमें पांडव निर्जल इसलिए याद नहीं रहती कि एकादशी है, भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें याद रहती, कम से कम मुझे तो इसलिए याद रहती है कि अरे आज तो रूखा, सब जगह रूखा ही दिखने वाला है। राधानाथ महाराज जब वो ब्रह्मचारी थे, राधा वृंदावन चंद्र और राधा वृंदावन नाथ अर्च विग्रह की सेवा करते थे, तो न्यू वृंदावन में एक घटना हुई। और वो समय था न्यू वृंदावन में, अमेरिका में, जब न्यू वृंदावन मंदिर में बहुत से गुंडे आकर अटैक करते थे, आए दिन कोई ना कोई गुंडे आकर अटैक करते थे। तो एक उनकी गैंग थी, उनको कहते थे द मोटरसाइकिल गैंग, मोटरसाइकिल पर आते थे और वो अटैक करते थे भक्तों को। तो वहां के जो मैनेजर्स, टेंपल प्रेसिडेंट वगैरह, उन्होंने अब एक सिक्योरिटी टीम खड़ी की भक्तों की, कि जो जब ये गैंग आएंगे तो हम लोग कैसे इनसे लड़कर अपने कम्युनिटी को बचाएं। तो अब सिक्योरिटी अलर्ट है कि नहीं, सिक्योरिटी टीम तो खड़ी कर ली, लेकिन सिक्योरिटी टीम अलर्ट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक बार ऐसे ही कोई मोटरसाइकिल गैंग वालों को भेजा, फेक मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए। तो वहां पर जैसे वो आ गए तो वो लोग सब अपने बंदूकें वगैरह निकाले, सब ढोंग चल रहा था, सब ये फेक था। लेकिन जो सिक्योरिटी टीम और जितने भक्त वहां पर, उस समय राधानाथ महाराज आरती कर रहे थे, जैसे अभी यहाँ पे आरती चल रही, तो आरती कर रहे थे, तो अचानक ये मोटरसाइकिल वाले सब बंदूक वगैरह लेकर धावा बोल दिए मंदिर के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। तो उसमें देखा कि सभी भक्त वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग गए, और राधानाथ महाराज उन्होंने आरती छोड़ी और वो गए और वो अपना एक कंबल लेकर आए और राधा वृंदावन नाथ, छोटे से मेटल के डीटीज, उनको कंबल में डालकर वो जंगल में भागे। और फिर जब कुछ शांत हो गया तो जो लीडर थे उन्होंने फिर सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि वो एक मॉक ड्रिल था, हम ये चेक करना चाहते थे कि कितने भक्त भगवान की सुरक्षा करते हैं और कितने अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो उन्होंने कहा खाली ओनली राधानाथ ब्रह्मचारी ही वॉज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, परंतु राधानाथ महाराज को पसंद नहीं आया ये मॉक ड्रिल। क्यों? क्योंकि उनको दुख ये था कि मुझे मेरे कंबल में भगवान को डालना पड़ा, जिस कंबल को लेकर मैं सोता था, तो उनको वो दुख था। और बाकियों को क्या दुख था कि जब टेस्ट आया तो हम केवल अपनी चमड़ी बचाने के लिए भागे, भगवान को बचाने के लिए कोई नहीं भागा। तो ये एक टेस्ट है, कई बार भगवान ऐसे ऐसे टेस्ट हमारे सामने रखेंगे कि हमारे जीवन में हम कितना भगवान के लिए कॉन्शियस रहते हैं और कितना अपने लिए कॉन्शियस रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के विषय में बताया कि जब प्रहलाद महाराज के ऊपर इतनी विपदाएं हिरण्यकशिपु और उसके सेवक डाल रहे थे, तो हर एक विपत्ति में प्रहलाद महाराज भगवान को याद कर रहे थे। जैसे वो एक कथा है कि जब प्रहलाद महाराज को एक ऊंची चोटी से नीचे फेंका गया, तो गिरते गिरते प्रहलाद महाराज अपने हृदय को दोनों हाथों से पकड़े हुए कि मैं गिरूंगा तो मेरे अंदर जो परमात्मा है उनको कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि हमारी प्रगति नेचुरली कितनी हो रही है, कि हम नेचुरली कितना भगवान कृष्ण के विषय में कॉन्शियस रहते हैं और कितना अपने विषय में अनकॉन्शियस रहते हैं। सो व्हाट वी कैन से, आवर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच अनकॉन्शियस वी आर अबाउट आवरसेल्व्स। कि जैसे कि गोपियां, नारद मुनि ने गोपियों को देखा कि वो पद्मासन में बैठकर ध्यान कर रही हैं, तो नारद मुनि ने पूछा कि वृंदावन में गोपियां पद्मासन में योग क्यों कर रही हैं, क्या जरूरत है इनको। तो जब गोपियों को पूछा तो गोपियों ने कहा कि हम योग के द्वारा कृष्ण को हमारे हृदय से बाहर निकालना चाहते हैं। देखो, योगी योग में लगते हैं कि परम सत्य को अपने हृदय में कैसे तो विराजित करें। यहां पर गोपियां योग साधना में लगी हैं कि मैं हम लोग येन केन प्रकारेण इस कृष्ण को हमारे हृदय से बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि जब तक ये कृष्ण हमारे हृदय में रहते हैं हमारे कोई कामकाज नहीं होता घर का। ये देखो उनका स्तर, देखो कि उनके घर के कामकाज नहीं होते कृष्ण कीर्तन के वजह से, और हमारा कृष्ण कीर्तन नहीं होता घर के कामकाज के वजह से। जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें यह हमें समझना है कि जब हम जप करने बैठते हैं तो हमारा हमको पूरा संसार याद आता है। और ब्रजवासी हैं कि पूरे संसार में भी रहें तो उनको भगवान याद आते हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है हमारे फले न परिचयेत, कि हमारी भक्ति का रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट सिम्टम है कि हम कितना स्वयं के लिए अनकॉन्शियस हैं और भगवान के लिए कॉन्शियस हैं। अगला मुद्दा कि जितना हम अपने ऊपर कॉन्शियस रहते हैं उतना हम अपने ऊपर खर्चा करते हैं। सो द सेकेंड पॉइंट विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाउ मच डू वी स्पेंड ऑन आवरसेल्व्स फॉर अवर ग्रेटिफिकेशन एंड हाउ मच डू वी स्पेंड फॉर कृष्णाज ग्रेटिफिकेशन। जैसे युधिष्ठिर महाराज के पास एक व्यक्ति आए, ये युद्ध के पश्चात की घटना है, और हस्तिनापुर में एक व्यक्ति आए युधिष्ठिर महाराज के पास एक पहेली लेकर। बहुत सी पहेलियां, उसमें से एक पहेली हम लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज के सामने एक पहेली रखी, और पहेली ये थी कि उन्होंने देखा एक व्यक्ति सुई लिया और सुई में से हाथी को पिरो रहा है, तो हाथी तो निकल गया, उसकी पूंछ अटक गई, बुझाओ इस पहेली को। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस पहेली को बुझाया कि यह कलयुग का लक्षण है कि कलयुग में लोग स्वयं के ऊपर हाथी के समान खर्चा करेंगे, परंतु जैसे ही भगवान की बात आई या प्रश्न उठता है तो पूंछ अटक जाती है। फिर तो स्वयं के ऊपर दे विल स्पेंड एलिफेंटीन मनी फॉर वन सेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू कृष्णा और एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा देन दे बिकम टाइट फिस्टेड. जैसे एक बंबई में एक परिवार है, तो उनकी छोटी डॉटर, उन्होंने जब गाय के विषय में सुना कि गाय इतनी महत्वपूर्ण है, तो ये छोटी सी लड़की, इसने अपने माता पिता को कहा कि इतने सालों से आप मेरे ऊपर जो खर्चा कर रहे हो, हर वर्ष जब मेरी बर्थडे होती है तो मेरे को कोई नया ड्रेस देते हो या खिलौना देते हो, या हर हफ्ते मुझे चॉकलेट्स देते हो या बाहर ले जाते हो खिलाने घुमाने, वो सारा खर्चा आप मुझे दो, पैसे दो, वो चीजें मत दो, पैसे दो मुझे. उसका पूरा उन्होंने कैलकुलेशन निकाला कि वो हफ्ते में कितनी चॉकलेट्स खाती थी, उसका कितना पैसा होता है, वो साल में कितने कपड़े खरीदती थी, उसका कितना खर्चा होता, वो सब उन्होंने खर्चा मांगा और वो पूरा गो सेवा में लगाया. जैसे हमने उदाहरण एक भक्त का दिया था कि वो स्कोडा खरीदने वाले थे गाड़ी 20 लाख की, उन्होंने कहा एक जगह से दूसरे जगह तो जाना है, तो उसके बदले उन्होंने एक साधारण सी मारुति ली और 15 लाख बचाकर वो भगवान की सेवा में लगाया. तो प्रश्न ये है कि हम अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं और भगवान के लिए हम स्वेच्छा से स्वाभाविक रूप से कितना करना चाहते हैं. जैसे मान लीजिए कि मिस्टर मुकेश अंबानी है, एक तरफ है मिस्टर मुकेश अंबानी, वो भगवान का प्रचार प्रसार के लिए 1 करोड़ रुपया देते हैं, और दूसरी तरफ श्रीधर कोलवेज का उदाहरण है कि श्रीधर कोलवेज वो कितना देते थे, 50 पैसे. कितना? 50 पैसे देता थे. तो अब ये दोनों में ज्यादा बड़ा डोनर कौन है आपके अनुसार? एक तरफ मिस्टर अंबानी 1 करोड़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ श्रीधर कोलवेज 50 पैसे दे रहे हैं. भगवान के दृष्टिकोण से श्रीधर कोलवेज बड़े डोनर हैं, क्योंकि श्रीधर कोलवेज कमाते 1 रुपया थे, तो उन्होंने परसेंटेज वाइज कितना दिया? 50% दिया. और जो भी मिस्टर अंबानी का 50% कितना होगा? 1 करोड़ नहीं होने वाला, बहुत है. कितना होगा 50%? 5000 करोड़. कितना सोचे? इतना है कि मालूम ही नहीं लोगों. तो यहां पर हम रकम की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटेलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन. इंटेंशन क्या है? तो जैसे एक भक्त चेकलिस्ट निकाले थे, बहुत सुंदर चेकलिस्ट उन्होंने निकाला कि साल में मैं अपने कपड़ों के ऊपर कितना खर्चा करता हूं और मैं डीटी ड्रेस के लिए कितना खर्चा करता हूं, साल में मैं अपने खाने पर कितना खर्चा करता हूं और भगवान के खाने पर कितना खर्चा करता हूं, साल में मैं अपने ट्रैवल्स पर कितना खर्चा करता हूं और मैं तीर्थ स्थान जाने पर कितना खर्चा करता हूं, साल में मैं अपने मनोरंजन के लिए कितने पिक्चरों जाके देखता हूं, मूवीज में जाके, और मैं कितनी प्रभुपाद की पुस्तकें बांटने में या पढ़ने में पैसा खर्च करता हूं, कितना मैं स्वयं के कंफर्ट्स के लिए पैसा खर्चा करता हूं और कितना मैं भगवान और उनके मिशन के लिए खर्चा करता हूं. तो ये सेकेंड चेकलिस्ट है. द मोर विल बी कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स, द मोर विल स्पेंड ऑन आवरसेल्व्स. द मोर विल बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, द मोर विल स्पेंड फॉर कृष्णा. So this is the second checklist to check how much एम आई एडवांसिंग इन माई साधना भक्ति. द थर्ड कि हमारी प्लानिंग और सिक्योरिटी रहती है खुद के लिए. मैं अभी यूके से आया, वहां पर मैंने देखा कि आप वहां पर अगर कोई अंगूठी भी खरीदते हो तो उसका भी इंश्योरेंस होता है. कार का इंश्योरेंस, ज्वेलरी का इंश्योरेंस, आपने अगर कोई कुछ भी छोटी सी छोटी चीज भी खरीदी उसका भी इंश्योरेंस करा लेते हैं लोग. एवरीथिंग इज इंश्योर्ड. सो ये थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ मच वी आर इंश्योरिंग अवर ओन सेल्फ. लाइफ का इंश्योरेंस योगक्षेम वहाम्य है ना, वो बीमा करा लिया, लाइफ का इंश्योरेंस करा लिया, कार का, घर का, ज्वेलरी का, सबका इंश्योरेंस करा लिया. प्रश्न है कि जो हमारे हमारा जप है, हमारा श्रवण है, हमारा सत्संग है, उसका इंश्योरेंस हमने कितना कराया. हाउ मच आर वी इंश्योरिंग अवर एवरीडे चैंटिंग, अवर एवरीडे हियरिंग, अवर एवरीडे प्लीजिंग कृष्णा, उसका इंश्योरेंस कितना कराया है, उसका चेकलिस्ट कितना है हमारा. जैसे एक और भक्त, वो उन्होंने देखा कि उनके एजुकेशन, उनका जॉब, उनका परिवार, ये सब कितना प्लानिंग करके रखते हो पहले से कि मेरा एजुकेशन, मेरा जॉब, मेरा परिवार, शादी, बच्चे, ये सब का प्लानिंग कितना होता है. कितने सालों से लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं. तो ये भक्त बता रहे थे कि इसके ठीक विपरीत मैं रोज मेरी चैंटिंग के लिए कितना प्लानिंग करता हूं कि कल मेरी चैंटिंग अटेंटिव हो इसके लिए मैं आज क्या प्लानिंग कर रहा हूं, कल मेरी हियरिंग अटेंटिव हो उसके लिए आज मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूं. तो ये उन्होंने सीखा किससे, प्रभुपाद लीलामृत जब उन्होंने पढ़ी. तो वो कह रहे थे कि प्रभुपाद लीलामृत उन्होंने पढ़ी तो उसका चैप्टर क्या है, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन. जो शुरुआत का चैप्टर है लीलामृत का, उसका टाइटल क्या दिया है सत्स्वरूप महाराज ने, प्रभुपाद वॉज प्रिपेयरिंग हिज एंटायर लाइफ टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस. कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया वो सब का निचोड़ किया था कि जब मैं 70 वर्ष की उम्र संन्यास लेने के पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार कैसे कर सकूं. सो दैट इज द यार्ड स्टिक अगेन, द थर्ड यार्ड स्टिक. टू द एक्सटेंट आई एम प्लानिंग एंड सिक्योरिंग माई सेल्फ माई मटीरियल लाइफ, हाउ मच आई एम प्लानिंग एंड सिक्योरिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ. डू आई प्लान इट आउट कि नहीं तो ऐसे माला उठाए आ गए मंदिर, चलो आज कर लेते हैं जब. नहीं, बाकी चीज करने के लिए हम कितना प्लान, एक सब्जी खरीदने के लिए कितना प्लानिंग होता है कि कौन से मार्केट में जाना है, कहां पर ताजी सब्जी मिलेगी, कहां पर सस्ती मिलेगी, कहां पर मेरे अनुसार सब्जी मिलेगी. तो यदि सब्जी खरीदने के लिए हम इतना प्लानिंग करते हैं तो क्यों नहीं हमारे जीवन के उद्धार के लिए हम प्लानिंग करें. ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र से शुरू कर देना चाहिए प्लानिंग हमने. और कई बार तो लोग कब्र में भी प्लानिंग करते हैं कि अरे एक और वड़ा पाव खा लेता तो कितना अच्छा होता. चौथा मुद्दा है कि प्लानिंग तो हम कर लेते हैं अपने बारे में, और फिर है क्राइसिस मैनेजमेंट. कि जब बिना प्लानिंग के क्राइसिस हमारे ऊपर आता है तो क्राइसिस में हम कितने सचेत रहते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट का उदाहरण यदि मैं दूं, कल मान लो या आज अपने नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया कि अगले हफ्ते पानी नहीं आने वाला, बिजली नहीं है, पानी नहीं. हम लोग कितना फिर तुरंत हम लोग यहां से उड़ जाएंगे, अरे पहले बाल्टियां भरो घर पे जा जाके. सो हाउ ईगर वी आर टू मैनेज अवर क्राइसिस. अब सोचो ये एक पानी नहीं आने वाला, बिजली नहीं आने वाली, ये कोई क्राइसिस है हमारे जीवन का। जनक महाराज के जीवन की एक कथा है कि जनक महाराज वो जब श्रवण करते थे तो ऐसा श्रवण करते थे कि चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए तो विश्वास नहीं होता था बाकी साधुओं को। साधु बोलते थे यार ये तो गृहस्थ है, ये तो एक राजा है, गृहस्थ है, ये थोड़ी कोई इतना तीव्रता से श्रवण करता हो। तो इन साधुओं का पर्दाफाश करने के लिए एक कथा आयोजित की गई मिथिला में, और महाराज जनक वो बैठे हुए कथा में, और समाचार आया, सारे साधु भी आए हुए थे यहां वहां से सुनने के लिए। तो एक समाचार कथा के बीच में आया कि महाराज जनक के महल में आग लगी है, और महाराज जनक का जो अंतःपुर है जहां पर वो खुद उनका इनर क्वार्टर्स, इनर चेंबर्स, वहां पर आग लगी है, और उसके बगल में जो साधुओं के लिए कैंप लगाया था उसमें भी आग लग गई। तो सारे साधु उठ खड़े हुए, कथा तो गई होती रहेगी, पहले अपने अपना गमछा कोपिन संभालो। परंतु महाराज जनक वो टस से मस नहीं हुए। तो जब महाराज जनक को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे महल में ही तो आग लगी ना, अगर रास्ते में मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो मैं तो केवल अपने महल की आग 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 सोचते हुए मर जाता। तो इस समय जब मैं श्रवण कर रहा हूं कृष्ण कथा, महाराज जनक बोले, इस समय सबसे बड़ा संकट यदि मेरे ऊपर आ जाए, यदि मेरे प्राण, मेरी मौत भी आ जाए, तो सबसे ज्यादा जरूरी काम मुझे क्या करना था, यही जो मैं अभी कर रहा हूं। तो जो मैं सबसे जरूरी काम कर रहा हूं, यदि उससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता तो मैं क्यों इसे छोड़ूं इस समय। कई बार हमारा तो एक सेलफोन बज जाता है तो हम पूरा हिल जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि महामंत्र क्या था। यहां पर महाराज जनक बता रहे हैं कि उनका महल, अंतपुर, सब कुछ जल जाए, लेकिन यदि मैं कृष्ण कथा में बैठा हूं तो इससे ज्यादा मेरे लिए इस समय जरूरी और कोई कार्य नहीं है। इसलिए महाराज कुलशेखर ने अपनी प्रार्थनाओं में क्या गाया, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशतु मे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तय कंठा वरुदन विदौ स्मरणम कुटस्ते। कि अभी मैं जवान हूं, मेरे प्राण अभी ले लो हे भगवान, क्योंकि पता नहीं अंत समय ये जो मेरा कंठ है कितने कफ वात पित्त से भर जाएगा कि आपका नाम उच्चारण मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे कृष्ण मैं अभी स्वस्थ अवस्था में जवान हूं, मेरे प्राण अभी आप हर लो ताकि मैं अपने अंत समय आपका नाम उच्चारण करते समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, ये आपका नाम उच्चारण करते समय मेरे प्राण चले जाए, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। तरव किम न जीवंती, श्रीमद् भागवत में कहा कि अगर ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 5-5, 6-6 हजार साल तक जीते हैं, क्या फायदा ऐसे जीवन का जिसके अंदर भगवान का स्मरण नहीं, भगवान का कीर्तन नहीं। एक बार एक घर में एक छोटा सा बालक, वो गलती से मिर्ची खा लेता है, तो जैसे उसको तीखी वो मिर्ची लगती है तो अपनी मां को पुकारता है, तो मां आती है, मां देखती है कि अरे इसने मिर्ची खा ली, तो मां एक पेड़ा लेकर आती है खिलाने के लिए। तो पेड़ा मिलता है, पेड़ा खाता है वो, और फिर दूसरे दिन उसी समय वो वापस अब नाटक करता है कि मिर्ची खाई उसने, चिल्लाता है मां का नाम, तो मां नहीं आती, तो बोलता है कि कल तो आई थी। तो मां ने बहुत अच्छे शब्द कहे उसको, मां ने कहा कि कल तूने मुझे पुकारा था, आज तू पेड़े को पुकार रहा है, आज तू मुझे नहीं पुकार रहा, तेरे मुंह से मां निकल रहा है लेकिन तेरे हृदय में पेड़ा है। तो कई बार हमारा हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब कोई क्राइसिस हमारे जीवन में आती है तो हम भगवान को पुकारते हैं, और भगवान जब हमें कुछ क्षमता दे देते हैं उसको दूर करने की, फिर हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर हमको वो पेड़ा चाहिए। तो यहां पर हमको समझना है कि जब हमारे जीवन में विपदाएं आती हैं, कौन कौन से उदाहरण हम ले सकते हैं, द्रौपदी, परीक्षित महाराज, इनके जीवन में जब विपदाएं आई तो ये किसकी शरण ग्रहण की इन्होंने, नेचुरली इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। इसलिए कुंती महारानी तो इस हद तक गई, विपदा संत तस्वत, कि मेरे जीवन में आप विपदाएं डालो भगवान जानबूझकर। कुंती महारानी ये बोल रही हैं कि मैं उसी के लायक हूं कि विपदा में ही मैं आपको पुकारती हूं, इसलिए विपदा दो मुझे ताकि मैं आपको तो पुकारती रहूं हर समय। तो ये जो चौथा मुद्दा है कि क्राइसिस या विपत्ति हमारे जीवन में आती है, महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है महाविपत्तौ संसारे, कि जब हमारे जीवन में महाविपत्ति आती है, जब हम मधुसूदन का नाम स्मरण करते हैं, विपत्ति तस्य संपत्ति, वो विपत्ति संपत्ति में परिणित हो जाती है। और यदि हमारे जीवन में संपत्ति संपत्ति हो, यदि भगवान का स्मरण नहीं, तो वो संपत्ति भी विपत्ति बन जाएगी, या वो संपत्ति विपत्ति है यदि उस संपत्ति के वजह से भगवान मधुसूदन का नाम स्मरण नहीं हो रहा। इसके विपरीत श्लोक में कहा गया है कि यदि महाविपत्ति में भी भगवान मधुसूदन का नाम स्मरण हो तो वो संपत्ति है हमारी। तो हमें चेक कब करना है, जब मेरे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो क्या मैं भक्तों की शरण लेता हूं, क्या मैं भगवान की शरण लेता हूं, या मैं केवल भौतिक सूत्रों की शरण लेता हूं उसको सुलझाने के लिए। रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि मान लो किसी ने कोई व्यापार शुरू किया और उसने बहुत उसमें धनराशि लगाई, संपत्ति लगाई, और मेहनत, समय, सब कुछ लगाया उस व्यापार में, और फिर जब उसका मुनाफा उसको मिला तो उसने देखा कि जो धनराशि मुनाफे में उसको मिली वो सारे जाली नोट थे। तो रूप गोस्वामी ये प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे व्यापारी पर क्या बीतेगी कि उसका मुनाफा जो है सब फेक करेंसी, काउंटरफीट करेंसी। तो वो ये उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि उसी प्रकार से यदि साधक गलत तरीके से श्रवण कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, तो उसका रिजल्ट उसको क्या मिलेगा, फेक करेंसी, और मरते समय उसको समझ में आएगा कि अरे मैंने ऐसे सूत्रों के ऊपर विश्वास किया ऐसे मेरे स्किल्स पर विश्वास किया जो केवल मुझे फेक करेंसी या जाली नोट मुनाफे के रूप में दे रहे थे। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि चाहे हम भक्ति में एक रुपया भी क्यों ना कमाएं, परंतु वो असली नोट होना चाहिए। इवन इफ वी आर अर्निंग वन रुपी और वन पैसा, इट शुड बी रियल करेंसी। और चाहे भक्ति में हम करोड़ों कमा लें, गड्डियां भरी हुई हैं, परंतु सब जाली नोट है, क्या फायदा? केवल वो भार ही बढ़ रहा है उसका। तो रूप गोस्वामी कहते हैं सिंपली बिकमिंग स्किलफुल इज लाइक अर्निंग लॉट्स ऑफ फेक करेंसी एंड बिकमिंग यूजफुल फॉर कृष्णा, इवन इफ इट इज वन रूपी, इट हैज वैल्यू। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं युगायतम निमेषेण, कि एक निमिष काल के लिए भी भगवान यदि आप ओझल हो जाते हो मेरी नजरों से, तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। एक क्षण आपकी विस्मृति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक क्षण आपकी विस्मृति ये सबसे बड़ी हार मेरे जीवन की। और इसका रिवर्स लॉजिक क्या होगा? एक क्षण की आपकी स्मृति वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हमें हमारी उपलब्धियों को, विपत्तियों को रीडिफाइन करना है भक्ति में। वी हैव टू रीडिफाइन अवर सक्सेस एंड फेलियर। What is my definition of success? What is my definition? जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे कि मैं उसी के हाथ का खाऊंगा जो कि लखपति है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार लखपति का डेफिनेशन क्या था? जिसने 1,00,000 नाम जप किया है उस दिन। तुरंत हमारे मन में लखपति जब नाम आता है या शब्द आता है तो क्या? जिसके पास एक पेटी नहीं। इसलिए हमें शास्त्र क्या सिखा रहे हैं? शास्त्र हमें सिखा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन की परिभाषाएं बदलनी है। भक्ति में आने से पहले जो हमने हमारे जीवन की परिभाषाएं बना रखी थी, उपलब्धियों की, विपत्तियों की, हार की, जीत की, रिश्तों की, नातों की, इन सब परिभाषाओं को हमें अब भगवान के दृष्टिकोण से देखते हुए बदलना है। इसलिए परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक के द्वारा डसे जाओगे, तो परीक्षित महाराज ने अपने जीवन की परिपूर्णता उसके अंदर देखी। भौतिक दृष्टिकोण से अरे ये तो असफल रहा, ये तो 7 दिन में ही मरने वाला। इसलिए रामानुजाचार्य जब वो अपने मृत शैया पर थे और रामानुजाचार्य के आसपास जब उनके शिष्य रो रहे थे, तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अरे रोना तो मुझे चाहिए, रोना तो मुझे चाहिए कि तुम लोग यहां पर रहोगे और मैं जा रहा हूं भगवत धाम, तुम्हें देखते हुए मुझे रोना चाहिए। तो देखिए इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत का क्रांतिकारी दृष्टिकोण। यह है श्रीमद् भागवत का रेवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट कॉन्सेप्ट, कि जिस दिशा में सारी दुनिया जा रही है और अपने आप को प्रगत मान रही है, श्रील प्रभुपाद ने कहा अंधा यथांधे रूपनीय माना, कि वो अंधे पथ पर हैं। इसलिए यहां पर ये जो हम चेकलिस्ट निकाल रहे हैं, ये चेकलिस्ट क्या है कि जो 10 चीजें बाहर की दुनिया में अपने आप पर जब कोई करता है तो उसको सफल माना जाता है, भक्ति मार्ग में वही चीज जब हम भगवान के लिए करते हैं तो वो मनुष्य सफल माना जाता है। यह है दृष्टिकोण। कितने मुद्दे हो गए? चार हो गए। पांचवा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है एक, तो इसलिए हम इसको इलैबोरेटली डिस्कस करना चाहेंगे अगली सिटिंग में। हम आपको बता दें कि पांचवा मुद्दा क्या है। पांचवा मुद्दा यह है, हाउ मच डू वी लाइक दोज पीपल हु लाइक अस एंड हाउ मच डू वी लाइक दोज पीपल हु लाइक कृष्णा और हाउ मच डू वी लाइक दोज पीपल हु आर लाइक्ड बाय कृष्णा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हमारी भक्ति की प्रगति इस एक मुद्दे पर आधारित है कि नहीं, और इसकी चर्चा हम करेंगे और इसके साथ साथ आगे के मुद्दों की चर्चा करेंगे अगले रविवार की क्लास में। जय श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न आज के क्लास के संदर्भ में? तो मेन पॉइंट ध्यान में रखना, प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया कुकिंग विथ स्मोक, बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि हमें सही अग्नि को लगाकर अपनी भक्ति को प्रज्वलित रखना है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जय श्रील प्रभुपाद की।
इस गृह शिक्षाष्टकम प्रभु की।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय।